તારીખ 13/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 500 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
520
છે. तीसरा चौथा पैराग्राफ चलेगा ठीक है. तीसरा पैराग्राफ फिर से विचार की उत्पत्ति होने के बाद क्या आगे विषय चला था कि वैराग्य और उपशम के बाद सिद्धांत ज्ञान का परिचय करना चाहिए. सिद्धांत ज्ञान का अभ्यास वैराग और उपशम बिना किया जाए तो नुकसान होता है और वो नुकसान में चंचलता बढ़ती है और वो ज्ञान सिद्धांत को समझने के लिए योग्य नहीं होता है या सक्षम नहीं होता है. इसलिए सबसे पहले वैराग्य और उपशम का बल बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए. अब कहते हैं कि विचार की उत्पत्ति होने के बाद भगवान वर्धमान स्वामी का दृष्टांत दे करके इस बात को और पुष्ट करते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जैसे महान पुरुष को भी छद्मस्त अवस्था में आत्मकल्याण का विचार हुआ तो उस विचार होने के बाद उन्होंने पुनः पुनः विचार किया कि जीव का अनादि काल से चार गतियों में अनंत अनंत बार जन्म मरण हुआ है और ऐसा चालू रहा है. अभी भी वह जन्म मरण आदि की स्थिति क्षीण नहीं हुई. उसे अब किस प्रकार से क्षीण करना आत्मकल्याण के विषय में विचार चलने के बाद पुनः पुनः परिभ्रमण का विचार चला है. भगवान को भी सबसे पहले क्या चला परिभ्रमण की चिंता आई कि मैं अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा हूं अब भी मेरा परिभ्रमण छूटने का कोई साधन नहीं मिला साधन मेरे से नहीं हुआ तो कैसे ये होता है ये परिभ्रमण कैसे मिटता है कैसे मिटाऊं मैं कैसे क्षीण करूं और ऐसी कौन सी भूल इस जीव की रहती आई है ऐसी कौन सी भूल चालू रही है कि जिस भूल का यहाँ तक परिणमन हुआ है जन्म मरण चालू हुआ जन्म मरण चालू हुआ. इस प्रकार से पुनः पुनः अत्यंत एकाग्रता से ये विचार बहुत चला है पुनः पुनः चला है बार बार चला है एक दो बार नहीं चला है बहुत बार चला है और सद्बोध के वर्धमान परिणाम से विचार करते करते जो सद्बोध मैंने आत्मा को कल्याणकारी हुए ऐसा बोध को सद्बोध कहते हैं. अच्छा बोध सुबोध कहो सद्बोध कहो उसके असर होने के बाद और असर में परिणाम वर्धमान हुए अच्छे परिणाम चढ़ती श्रेणी के परिणाम होने के बाद
शेर की पर्याय में चरण विधि धारी मुनि का संबोधन शेर की पर्याय में चरण विधि धारी मुनि का संबोधन
हुआ और परिणाम बढ़ने लगे. उस परिणाम से विचार करते करते जो भूल भगवान ने देखी है उसे जिनागम में जगह जगह कहा है. इस भूल का भी बात जिनागम ने भी बहुत बार कही है फिर भी जीव का ध्यान नहीं गया है.
भक्ति हुई
सबसे पहले वर्धमान स्वामी का जीव था, सबसे पहले उनको परिभ्रमण की चिंतना आई थी। हाँ, सबसे पहले तो वेदना में आ गए थे वो। वेदना में आए तब उनको अंतःकरण की शुद्धि हुई और बाद में सम्यक दर्शन हुआ। इसके पहले सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं हुआ है। तो बोध तो उन्होंने उसी पर्याय में मिला था, सिंह की पर्याय में ही सद्बोध मिला था और वर्धमान परिणमन हुआ था। तो भगवान ने, मैंने भगवान के जीव को, भगवान ने जो भूल देखी, मतलब भगवान के जीव ने वो भूल देखी थी उस पर्याय में, उस भूल का निर्देश जिनागम में बार बार हुआ है। जगह जगह पे ठाम ठाम वो बात जिनागम कहता है।
कौन सी भूल देखी?
वो भूल देखी कि ज्ञानी पुरुष के सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या, प्रत्यक्ष योग का महत्व, वो बात जिनागम में जगह जगह आई है। और वो बात समझ में नहीं आई, बहुत शास्त्र पढ़कर के वो बात समझ में नहीं आई कि प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या होता है और उससे कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो बात जीव को समझ में नहीं आई है। बहुत पढ़ा है, बहुत क्रियाएं की है, सब कुछ किया है, लेकिन वो बात की क्षति रह गई है, ये बीजभूत भूल है। इसका महत्व आ गया, जीव का परिणमन कोई दूसरा हो जाता है। और खास करके ये विषय अनुभव करने का रहा, सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग का, प्रत्यक्ष सानिध्य का हमारे आत्मा पे क्या असर होती है, ये अनुभव जब नहीं होता है, उसके फायदा का, उसके लाभ का अनुभव नहीं होता है, वहां तक वो बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र में वो बात आती है, लेकिन वो बात बौद्धिक स्तर से समझ में आती है तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है। बात समझ में आती है, महत्व समझ में नहीं आता है। दोनों बात अलग अलग है। बात समझ में क्यों आती है? बौद्धिक लेवल पे क्षोभ समय समझने की शक्ति है तो समझ में तो आ ही जाता है, फिर भी उसका लाभ जो नहीं होता है तो वहां तक वो बात अनुभव से समझ में नहीं आती है। और जिसको अनुभव से समझ में आती है उनकी दशा कुछ और हो जाती है। ये एक रहस्यभूत बात रही हमेशा और बहुभाग ऐसा बनता है। ये बीजभूत भूल रही है, इसलिए यम नियम संयम आप कियो, उसमें आखिर में क्या बोला कि वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पड़ो, बिन सदगुरु को इन भेद लहे। मैंने जब सदगुरु का प्रत्यक्ष योग होता है तब उसका भेद, मैंने रहस्य प्राप्त होता है। बिन सदगुरु को इन भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे, तुम उसका अनुभव करके देखो ना। ये भूल बीजभूत भूल रही है। अब क्यों न विचारत है मन से कुछ और रहा उन साधन से। ये सब मैंने जितने भी साधन कहा, इससे कुछ साधन दूसरा ही है, ऐसा क्यों नहीं विचार करता है? जब सदगुरु से प्रेम बढ़े जब वो प्रभु से सदगुरु ने शब्द लिया वहां, जब वो प्रेम बढ़े, प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, प्रेम भी नहीं लिया, प्रेम का प्रवाह लिया, संवेग लिया है साथ में तीव्र प्रेम। जब प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, वहां गुरु शब्द नहीं लिया, वहां प्रभु बता दिया उसको, सब आगम भेद सोर वसे, फिर आगम के सभी रहस्य उनके हृदय में आ गया, आ जाता है। बिना आगम पढ़े, आगम पढ़ने पर भी आगम का रहस्य नहीं मिलता है, वो सदगुरु से प्रेम प्रवाह बढ़ने से उसका रहस्य मिल जाता है। तो ये बात जो है वो अनुभव की नहीं, जिसको वो अनुभव होता है उसको उसकी उसका मूल्य मालूम पड़ता है, और जिसको अनुभव नहीं होता है उनको उसका मूल्य मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, अगर बुद्धिमानी हो तो, बुद्धि हो तो विशेष रूप से, ऐसी बात का, ऐसी बात हमको क्यों समझ में नहीं आती है, ये प्रश्न उठना चाहिए बुद्धि में कि जब हमको ये बात नहीं हुई तो हमको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। उसका उहापो, उसका कौतूहल, उसकी जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए और उसके पीछे लगना चाहिए, क्योंकि और सब साधन तो निष्फल जाता है, सफल होता ही नहीं, तो ये साधन क्या काम का, कोई साधन काम का तो रहा नहीं। तो ये प्रकरण कोई दूसरे प्रकार का है, दूसरे जाति का है, ये बात तो कम से कम जिज्ञासा में तो आनी चाहिए। कहते हैं कि जिनागम में जगह जगह कहा है, जिस भूल को समझकर मुमुक्षु जी उसको रहित हो, ये भूल अगर समझ में आती है तो उससे वो रहित हो सकता है। अगर ये भूल समझ में ही नहीं आती है तो जो साधन करता है वो बार बार करेगा, करता रहेगा, करता जाएगा, और उसका फल कोई पारमार्थिक फल तो आएगा नहीं। जीव को भूल देखने पर तो वह अनंत विशेष लगती है, परंतु सबसे पहले जीव को सब भूलों की बीजभूत भूल का विचार करना योग्य है। ऐसे अपनी भूल देखे तो बहुत भूल देखने में आएगी कि मैं बहुत जगह गलती करता हूँ, फिर भी ये बीजभूत भूल का सबसे प्रथम विचार करना योग्य है कि जिस भूल का विचार करने से सभी भूलों का विचार होता है, ये बीजभूत भूल सुधर जाएगी तो सब भूल सब भूल कैसे होती है, क्यों हुई अब तक, कैसे हमने ये गड़बड़ किया और हमारा ध्यान क्यों नहीं गया, सब समझ में आने लगेगा। क्यों कि दृष्टि पलट जाती है। तो मीराबाई ने गाया नहीं, उलट भई मेरे नैनन की, नैनन मैंने वो नैनन नहीं है, आंख वाली बात नहीं है, नैन मैंने दृष्टि, मेरी दृष्टि उलट गई, मैंने बिल्कुल उल्टी हो गई, पलटी पलट गई, पहले जो मेरी दृष्टि थी इससे बिल्कुल पलट करके मेरी दृष्टि में फेरफार हो गया है। क्यों कि मुझे लागी लगन गुरु चरणन की, और कोई बात नहीं है, गुरु चरण की इतनी लटक लगी, लटक मैंने लगन लगी कि मेरी दृष्टि पलट गई उससे, और भवसागर बहुत स्वयंभू रमण समुद्र से भी बड़ा है। क्या असंख्य योजन का स्वयंभू रमण समुद्र है, भवसागर तो इससे भी बड़ा है। तो के सूख गयो, ये भवसागर तो सूख गयो है, फिकर गई मुहे तरनन की, वो इसको तरने के क्या बात रही, जब सागर ही सूख गया तो उसके तरनन की चिंता ही कहाँ है रे। कितना आसान हो गया, क्यों आसान हो गया कि मुहे लाएगी लटक गुरु चरणन, ये जो थे वो मार्गानुसारी थे, मीराबाई थे वो मार्गानुसारी थे, तो ये सब बात उनके सूझ में आई है। जो बात अच्छे अच्छे विद्वानों को, पंडितों को, पढ़े लिखने वाले को, बुद्धिमानों को समझ में नहीं आती है, वो बात उनके समझ में कहाँ से आई? कि मार्गानुसारी पना था तो उनकी सूझ में वो बात आती है। जिस भूल का विचार करने से सभी भूलों का विचार होता है, और जिस भूल दूर होने से सब भूलें दूर हो जाती है। ये भूल दूर होने से दूसरी सब भूल दूर हो जाएगी, और ये भूल दूर नहीं हुई तो सब साधन बार अनंत की हो, ये बात हो जाएगी। कृपालु देव ने तो भूल का नाम ही नहीं दिया, सारे पत्र में सस्पेंस में रख दिया है। लेकिन जो बीजभूत भूल है वो वही भूल है। कोई जीव कदाचित नाना प्रकार की भूलों का विचार करके उन भूलों से छूटना चाहे, अनेक प्रकार की अपनी अपनी जो भूल है उस भूल से छूटना चाहे, तो भी वह कर्तव्य है। भूल से छूटना वो तो कर्तव्य है, और वैसी अनेक भूलों से छूटने की इच्छा या भावना जो होती है, ये मूल भूल से छूटने का सहज कारण होता है। कि सभी भूलों से छूटना है तो सभी भूलों से कैसे छूटा जाए? कि एक मूल भूल से छूटेंगे तो सभी भूलों से छूटेंगे, तो वो भावना उनको वहां ले आती है, मूल भूल छूटने के कारण में ले आती है। ऐसा भी कभी बनता है, वो बात ठीक है।
आपने जवाब तो परसों दे दिया था,
एक सौ सैतालीस में वो बात आ जाती है, बात खत्म है, वो तो यहाँ से ही खत्म हो जाती है। यहाँ तक तो चला था कल। अब कहते हैं कि शास्त्र में जो ज्ञान बताया गया है वह ज्ञान दो प्रकार से विचारणीय है। शास्त्र में जितना भी ज्ञान का विस्तार है, इसका दो विभाग है, दो प्रकार है। एक प्रकार उपदेश का है और दूसरा प्रकार सिद्धांत का है। उपदेश किसको कहते हैं? कि जन्म मरण आदि क्लेश युक्त इस संसार का त्याग करना योग्य है, ये संसार उपादेय नहीं है। क्या करते हैं संसार के सारे जीव? संसार को ही बढ़ाने का काम करते हैं। संसार की चिंता, संयोग की चिंता, और उसके पीछे पूरे जीवन का परिणाम लग जाते हैं। तो जब उपदेश बोध का असर होता है तो उसमें होता है कि ये संसार है ही है और मोक्ष उपाधि है, दोनों प्रतिपक्ष में है। संसार है ही है और मोक्ष उपाधि है।
बात तो उठाई है उन्होंने, आत्मा एक है कहने के, बात यहां से उठाई।
वो तो सिद्धांतिक बात चली ना, कि आत्मा एक है कि अनेक है। तो कि पहले देखो वैराग्य उपशम होकर के इस बात को समझो। तो सारे शास्त्र में जितना भी उपदेश है उसके दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, एक उपदेश बोध और एक सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध है वस्तु का स्वरूप का निरूपण करता है, पदार्थ विज्ञान को बताता है, ये बिल्कुल साइंस का विभाग हो गया। और सिद्धांत का कंक्लूजन क्या? आप जो भी सिद्धांत समझते हो, मैंने वस्तु के स्वरूप को समझते हो कि आत्मा में गुण धर्म क्या है, जड़ पुद्गल परमाणु में गुण धर्म क्या है, आपस में उसका एक्शन रिएक्शन क्या है, जीव को सुख दुख क्यों होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, ये सब समझने के पीछे आपने कंक्लूजन क्या निकाला? उसका सारांश क्या निकाला? सिद्धांत तो समझे क्योंकि बुद्धि है समझने की, लेकिन कंक्लूजन निकालने में वैराग्य उपशम चाहिए तो सही कंक्लूजन निकलेगा। तो उसमें क्या आता है कि इस जन्म मरण आदि क्लेश युक्त इस संसार का त्याग करना योग्य है, यानी वो सारा संसार है ही है। अनित्य पदार्थ में विवेकी को रुचि करना नहीं होता। जो भी संयोग है, शरीर, कुटुंब, ग्रह और संपत्ति आदि जितने भी संयोग है वो अनित्य है, अनित्य पदार्थ है, उसमें विवेकी को रुचि करना नहीं होता। अगर वो रुचि करता है अविवेक से तो दुखी होता है, क्योंकि पदार्थ अनित्य है, संयोग का वियोग निश्चित है, तो दुख होगा, बहुत दुख होगा। कितना दुख होगा? बहुत दुख होगा, असह्य दुख हो जाएगा। इसलिए विवेक को रुचि करना नहीं चाहिए।
भगवान महावीर को यही उपदेश दिया होगा, शुरुआत में यही उपदेश दिया होगा।
हाँ, उपदेश तो उपदेश में तो वही बात आएगी, उपदेश में तो वही प्रकरण है, तो वही उपदेश आएगा।
हाँ,
माता पिता स्वजन आदि, स्वजन में स्त्री पुत्र आदि मित्र आदि जो भी होते हैं सबका, आदि में सब ले लेना। स्वार्थ रूप संबंध होने पर भी यह जीव उस जाल का आश्रय किया करता है। ये संबंध स्वार्थ का इसलिए कि अगर इसका राग पोसाता नहीं है तो द्वेष दिखने में, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। अगर अपनी अपेक्षा का पोषण नहीं होता है, जिस परिवार में क्या होता है कि अपनी अपेक्षा का पुष्टि नहीं मिलता है, पोषण नहीं होता है, तो राग की जगह द्वेष आ जाता है। तो इसको बोल क्या बोला, जाल है। कुटुंब को क्या बोले, जाल को जग निवास उसको जाल इसलिए बोले कि बहुत से प्रकार की उसमें झंझट पैदा हो जाती है। और जैसा करोलिया, करोलिया क्या हिंदी में बोलते हैं, मकड़ी अपनी जाल में फंसता है, वैसे संसारी जीव भी अपनी जाल में फंसता है, उस जाल का आश्रय क्या करता है। यही उसका अविवेक है कि खुद को तो नुकसान करता है और राजता भी है, नुकसान में राजी होता है, बाजी तो उल्टी खेलता है और होता है राजी, खुशी होता है। वो इसका अविवेक है। प्रत्यक्ष रूप से त्रिविध ताप रूप यह संसार, त्रिविध मैंने आधि, व्याधि और उपाधि, तीन प्रकार के ताप होता है। ताप होता है मैंने जीव को दुख होता है, त्रास होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें दुख। तो फिर भी ये जानते हुए भी मूर्ख जीव, क्या बोला उसको, मूर्ख जीव उसी में विश्रांति चाहता है। विश्रांति का कोई ठिकाना नहीं है वहां, कभी किसी को शांति हुई नहीं, न होने वाली भी है, फिर भी जीव चाहता है कि मुझे यहां से आराम मिले, मुझे शांति मिले, मुझे विश्रांति मिले, वो विश्रांति चाहता है। परिग्रह, आरंभ और संग ये सब अनर्थ के हेतु है, और जो भी है वो उसको दुर्गति में ले जाता है। मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य की अपन चर्चा करें, एक सामान्य मनुष्य होता है, कोई लंबा चौड़ा पाप नहीं करता है, कोई नौकरी करता है, कोई सामान्य व्यापार करता है, हिंसा आदि का कोई काम नहीं करता है, कोई बड़ा बड़ा कारखाना लगाता है कोई बात नहीं है, कोई नौकरी करता है, कोई सामान्य व्यापार करता है, फिर भी उस जीव की तिरियंज आदि गति में दुर्गति क्यों होती है? होती है दुर्गति। अगर वो सही पारमार्थिक रास्ता नहीं पकड़ता है तो मर करके वो दुर्गति में चला जाता है जी। क्यों? नहीं, उसका जो कुटुंब प्रति के परिणाम है ममत्व के, अपनत्व के, उसमें भी परिणाम बहुत बिगड़ते हैं। बोले भाई में प्रवृत्ति इतनी नहीं बिगड़ती है, परिणाम जो अपनत्व के है वो तीव्र मिथ्यात्व के हो जाते हैं, और मिथ्यात्व तिरंज गति का कारण बनता है। पशु पक्षी में जीव क्यों जाता है? मिथ्यात्व के कारण से तो जाता है, और मरते वक्त ज्यादा परिणाम बिगड़ता है, क्योंकि अपनत्व तो को ममत्व तो बहुत कर लिया, और उसको जाना तो है ही नहीं, और जाना पड़ेगा वो बात तो आ चुकी सामने, तो परिणाम और बिगड़ेगा। परिणाम बिगड़े बिना रहेगा नहीं, और दुर्गति में जाए बिना भी रहेगा नहीं। इसलिए जीव जितना भी ममत्व करता है परिवार का, उसको अधोगति का कारण बन जाता है। दूसरा, पाप करे नहीं करे कोई संबंध नहीं है, ये मिथ्यात्व जो है, ये दर्शन मोह है, वो दुर्गति में ले जाएगा उसको। इसलिए कहते हैं कि आरंभ, परिग्रह और संग, ये सब मतलब इसमें ममत्व अपनत्व होना वो चीज नुकसान का कारण नहीं है, उस चीज में अपनत्व होना वही नुकसान है, ये सब अनर्थ के हेतु है। इत्यादि जो शिक्षा है उसको उपदेश ज्ञान कहने में आता है। ये उपदेश ज्ञान का एक विभाग होता है, जिनागमों में एक विभाग तो उपदेश ज्ञान का है। और आत्मा का अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व अथवा अनेकत्व, बंध आदि भाव, मोक्ष वगैरह, आत्मा की सर्व प्रकार की अवस्था, पदार्थ और उसकी अवस्था, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, इत्यादि विषयों को दृष्टांत आदि से, दृष्टांत, युक्ति, न्याय, लॉजिक, साइंस के अलावा, ये तो साइंस है सब, और साइंस के उपरांत उसको समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, और अनुभव के लिए युक्ति देते हैं कि देखो अनुभव करो तुम, ऐसा होता है कि नहीं होता है, और उसके लॉजिक न्याय देते हैं, और उसका गणित भी बताते हैं करणानुयोग से, कि देखो कर्म में ऐसे गणित होता है, जैसे एक आदमी ने एक खून किया और एक आदमी ने बम गिरा के हजारों लाखों आदमी को मार दिया, खून कर दिया, वो आदमी पकड़ा गया, एक खून करने वाला भी पकड़ा गया और बम गिराने वाला भी पकड़ा गया। हमारे पास कौन सी व्यवस्था है? दोनों को फांसी मिलेगी, एक खून करने वाले को भी फांसी मिलेगी और हजारों को, लाखों को मारने वाले को भी एक फांसी मिलेगी। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम दोनों का अलग अलग न्याय करें, क्या लाखों को मारने वाले को लाख बार फांसी दे, वो व्यवस्था हमारे पास तो है ही नहीं, जबकि कुदरत के पास वो व्यवस्था है। कुदरत का कानून भी होता है, उसको कर्म की थियोरी कहते हैं, उसको गणित कहते हैं, कि देखो एक बार खून करने वाले को ये होता है, लाख बार खून करने वाले को ये होता है, इसका गणित होता है, तो उसको नरक पर्याय मिलती है। वहाँ उसको बार बार लाखों बार काटते हैं, कितने काटते हैं कि उसके राय राय जितने टुकड़े हो जाए उतने काटते हैं, फिर वो शरीर, आयुष पूरा नहीं होता है तो फिर वो शरीर एक हो जाता है, फिर दोबारा काटते हैं, ये बात होती है। तो कुदरत में तो सब ते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, उसका स्थान होता है, ऐसा नहीं होता है कि अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है तो कुदरत के वहाँ व्यवस्था नहीं है, वो कोई ईश्वर का बात नहीं है, ये तो कुदरती व्यवस्था है कि आप गेहूं का बीज बो, ऊपर गेहूं आएगा, उसी जगह बगल में आप चावल बो तो चावल मिलेगा, और ज्वार रखो तो ज्वार मिलेगी, ये कुदरत की व्यवस्था है। तो ऐसा जो सिद्ध किया जाता है, साबित किया जाता है, इसके विभाग को सिद्धांत ज्ञान कहने में आता है। ऐसे दो प्रकार के ज्ञान शास्त्रों में बताया गया है। मुमुक्षु जीव को प्रथम तो वेदांत और जिनागम इन सब का अवलोकन उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करना योग्य है। तो क्या है, आगम हाथ में लेंगे तो बात तो दोनों मिलेगी इसमें। जब शास्त्र हाथ में लेते हैं तो शास्त्र में तो एक बात आती है, ऐसा नहीं है, दोनों बात आती है, क्योंकि कहने वाला तो दोनों प्रकार से बात कर लेता है, अधूरी बात तो करता नहीं, बात पूरी करता है, तो सिद्धांत और उपदेश साथ साथ में कर देते हैं। तो सबसे पहले उपदेश ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही आगम को अवलोकन करना, आगम को पढ़ना है तो पहला उपदेश ज्ञान की प्राप्ति करना, पहले सिद्धांत ज्ञान की प्राप्ति में नहीं चला जाना। ये भी एक सूचना है, अगत्य की सूचना है, महत्व की सूचना है कि आपको शास्त्र पढ़ना है तो जिनागम कहता है कि आत्मा अनेक है, वेदांत कहता है कि आत्मा एक ही है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, वो मूल डिफरेंस है वो तो। क्योंकि सिद्धांत ज्ञान जिनागम और वेदांत में परस्पर भिन्न देखने में आता है, और उस भिन्नता को देखकर मुमुक्षु जीव शंका युक्त हो जाता है, मुमुक्षु को शंका हो जाती है कि क्योंकि वेदांत में भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुए, त्यागी हुए, बुद्धिमान हुए, ऋषि मुनि हुए, और बड़े बड़े प्रेस्टीज वाले हुए हैं। शंकराचार्य को देखो, इसके ग्रंथ देखो, तो कान पकड़ना पड़े कि बुद्धि है कोई, ऐसा नहीं है कि वैसे ही ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ग्रंथ लिखा नहीं जाता। जो बड़े बड़े ग्रंथ का रचना करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं तो करते हैं, और त्यागी भी थे, बुद्धिमान भी थे और त्यागी भी थे, जंगल में रहते थे फिर, और उनके अनुसरण करने वाले आज लाखों करोड़ों लोग हैं। जैनियों से ज्यादा संख्या तो उन लोगों की है संप्रदाय में, और उसमें भी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग होते हैं। शंका आएगी तो सबकी भूल होती है क्या, इतने लोगों की भूल होती है क्या, ऐसे संख्या से नाप कर लेता है जी। तो एक सिद्धांत ऐसा है कि सत को संख्या की जरूरत नहीं है, जो सत्य है वो संख्या से सपोर्ट नहीं किया जाता, उसका आधार संख्या नहीं है, ज्यादा माने तो सच्चा और कम माने तो वो सच्चा नहीं। वो बात लौकिक में लागू होती है, परमार्थ में वो बात लागू नहीं होती है। लौकिक में तो क्या है, डेमोक्रेसी में तो वही होता है, जो ज्यादा कहे वही ठीक है। वो भी है, लेकिन नेता एक होता है और नेता को अनुसरण करने वाले अनेक होते हैं। तो बुद्धि किसकी ज्यादा, नेता की या अनुसरण करने वालों की, किसकी होती है, वो बात अलग है। परमार्थ में तो क्या है कि आत्म कल्याण के जानने वाले जो तजग्न होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, वो तत्वज्ञ जीव बहुत नहीं होते हैं, वो संख्या में हमेशा हमेशा कम होते हैं, ज्ञानी हमेशा कम ही होते हैं। तो उसमें लोक दृष्टि से विचार करें तो उसमें गलती बड़ी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा लोग कहाँ हैं, अगर ऐसा माने तो हमको मुसलमान होना पड़ेगा या क्रिश्चियन होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या विश्व में आज इसकी है और सबसे तत्वज्ञान कम से कम हो तो उन लोगों में है। तत्वज्ञान मान नहीं है उतना, मामूली है, जबकि वेदांत में बहुत है, जिनागम में तो इससे भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो जिनागम में है, वेदांत में उतना नहीं है और बाकी के धर्म में तो बहुत कम है, फिर भी संख्या दूसरे लोगों की ज्यादा है आज। तो संख्या के आधार से तो उसका यथार्थ निर्णय हो सकता नहीं है। तो उस प्रकार से जीव को कहीं न कहीं शंका हो जाती है और यह शंका चित्त में असमाधि उत्पन्न करती है, यानी विक्षेप उत्पन्न करती है। फिर क्या है, चित्त डामाडोल हो जाता है, निर्णय करने के लिए परिस्थिति बुद्धि की नहीं रहती है। ऐसा प्राय होने योग्य ही है, बहुभाग ऐसा बनता है, क्योंकि सिद्धांत ज्ञान तो जीव में किसी अत्यंत उज्ज्वल क्षोभ संशय और सदगुरु के वचन की आराधना से अद्भुत होता है। दो बात लिया क्योंकि सिद्धांत ज्ञान तो जीव में किसी अत्यंत उज्ज्वल क्षोभ संशय, उज्ज्वल क्षोभ सम मैंने क्या, निर्मल ज्ञान, क्षोभ सम मैंने क्षोभ सम ज्ञान, उज्ज्वल मैंने निर्मल, मति निर्मल हो, ज्ञान में निर्मलता हो तो सिद्धांत ज्ञान जीव में हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, या तो कोई सद्गुरु के योग से सिद्धांत ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो सद्गुरु के चरण में आया उसका दर्शन वो कम हुआ और उसके ज्ञान में भी निर्मलता आ गई, या उसने कम से कम उतना निर्णय किया कि मुझे आज्ञाकारिता में रहना है, तो वो भी दर्शन मोह की मंदता का कारण बन जाता है। या सद्गुरु के वचन की आराधना से, वचन की सुनने से नहीं, मात्र वचन सुनने से सिद्धांत बोध का परिणमन नहीं होता है, आराधना से होता है। आराधना मैंने वो अमलीकरण के लिए तैयार हो गया कि वो जो कहेंगे मुझे वो कर लेना है, तो उसको सिद्धांत ज्ञान है, वो प्राप्त हो सकता है। सिद्धांत ज्ञान का कारण उपदेश ज्ञान है और सिद्धांत ज्ञान की प्राप्ति का कारण कौन है, उपदेश ज्ञान है। उपदेश ज्ञान प्राप्त होवे नहीं और सिद्धांत ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी बनता नहीं है। सदगुरु का या सत्शास्त्र के से जीव में पहले यह ज्ञान दृढ़ होना योग्य है कि जिस उपदेश ज्ञान का फल वैराग्य और उपशम है। उपदेश ज्ञान मिला, इसका अर्थ क्या है कि इसका फल आए वैराग्य और उपशम, कषाय रसमंद होवे और अपने उदय भावों में निरसता आ जाए। ये बात जब होवे तभी उपदेश ज्ञान की प्राप्ति हुई ऐसे मानना है, वरना उपदेश ज्ञान भी सुनने में आता है लेकिन प्राप्ति नहीं होती है। सुनना एक बात है, प्राप्त होना कोई अलग बात होती है। वैराग्य और उपशम का बल बढ़ने से जीव में सहजिक सूक्ष्म की निर्मलता होती है, ज्ञान की निर्मलता आती है। वैराग्य उपशम से क्या होता है, ज्ञान की निर्मलता आती है और दर्शन मोह भी अनुभाग उसका भी कम होता है, और सहज सहज में सिद्धांत ज्ञान होने का कारण होता है, सहज कारण बनता है, आसानी से सिद्धांत ज्ञान का प्राप्ति उसको हो सकेगी।
तो उज्ज्वल क्षोभ समय सद्गुरु ना वचन ने आराधना कर,
બે રીતે થાય છે નિર્મળતા. વૈરાગોપશમ થી પણ નિર્મળતા થાય છે અને સદગુરુના વચનની આરાધનાથી પણ નિર્મળતા થાય છે. બંને પ્રકાર છે નિર્મળતા થવામાં. તો બંને પ્રકારથી વાત કરી, બંને વાત લાગુ પડે છે નિર્મળતા થવામાં. યદિ જીવમે અસંગ દશા આ જાય તો આત્મ સ્વરૂપ કા સમજના એકદમ સરળ હો જાતા હૈ. ઓર ઉસ અસંગ દશા કા હેતુ વૈરાગ્ય ઓર ઉપશમ હૈ. અગર જીવમાં અસંગ દશા આ જાય તો, કેમ કે એ પત્ર લલ્લુજી કો લિખ રહે હૈ જો સાધુ થે સ્થાનક વાસી કે, તો લલ્લુજી કો અસંગતા કે લિયે ક્યો લિખા કે આજકલ સાધુ લોગ હૈ વો સમાજ કા સંગ બહોત કરતે હૈ. અપના કુટુંબ કા તો વો ત્યાગ કરતા હૈ ઓર અનેક કુટુંબ કા સંગ કર લેતા હૈ. ગાંવ ગાંવ મેં ઉનકે કુટુંબ હોતે હૈ ઓર એક ગાંવ મેં અધિક એક સે અનેક કુટુંબ હોતે હૈ. તો યે જો સંગ હૈ વો સાધુ કે લિયે બહોત નુકસાનકારક હોતા હૈ. તો ઉસકે લિયે આપ અસંગતા મેં આ જાઓ, કિસી કા સંગ મત કરો. અગર આત્મ સાધના કરની હૈ, આત્મજ્ઞાન કરના હૈ તો આપ લોગો કો સંગ છોડના જરૂરી હૈ, ક્યોંકિ વો સમાજ પ્રતિબંધ મેં બહોત રહેતે હૈ. તો ઉસકા તો કુટુંબ પ્રતિબંધ હોઈ ગયા ઓર શરીર પ્રતિબંધ ભી હોઈ ગયા, તો વો તો ઉનકા તો કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કા કોઈ અવસર આયેગા નહીં. સાધુ હોને કે બાવજૂદ ભી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ નહીં હોગી ઉનકો. તો કહેતે હૈ કે જીવ મેં અસંગ દશા આ જાય તો આત્મ સ્વરૂપ કા સમજના એકદમ સરળ હો જાતા હૈ. ઓર ઉસ અસંગ દશા કા હેતુ વૈરાગ્ય ઓર ઉપશમ હૈ. તો આપ વૈરાગ્ય ઓર ઉપશમ મેં આ જાઓ તો અસંગ અસંગતા ભી આપકો હો સકેગી. જિસે જિનાગમ મે તથા વેદાંત આદિ અનેક શાસ્ત્રો મે વારંવાર કહા હૈ, વિસ્તાર સે કહા. ઉપદેશ જ્ઞાન તો દોનો જગે હૈ. વેદાંત મે ભી ઉપદેશ જ્ઞાન બહોત બઢિયા હૈ ઓર જિનાગમ મે ભી ઉપદેશ જ્ઞાન તો બહોત બઢિયા હૈ. ક્યોંકિ વેદાંત મે જો ભી મહાત્મા હુએ ઉન લોગો ને વૈરાગ્ય ઓર ઉપશમ કે લિયે તો અચ્છા અચ્છા ઉપદેશ દિયા હૈ. ઓર યોગ વાશિષ્ઠ ઇસકા સબૂત હૈ. અત નિસંશયતા સે વૈરાગ ઉપશમ સે ઉપશમ કે હેતુભૂત હેતુભૂત યોગ વાશિષ્ઠ આદિ યો જૈસે સદગ્રંથ વિચારણીય હૈ. લો કોઈ વાત ચલી હૈ. સ્થાનક વાસી કે સાધુ કો વેદાંત કા ગ્રંથ પઢાતે હૈ કે આપકો યે પઢના ચાહિયે ઓર આપકા જો વૈરાગ ઉપશમ હૈ વો યથાર્થ હોના ચાહિયે. ભલે ત્યાગ ક્યા હો એસે વો ત્યાગ કો નહીં માનતે થે. ઇનકે પરિણામ મેં વૈરાગ ઉપશમ હૈ કે નહીં વો દેખના ચાહતે થે. ઓર ઉસકે લિયે યોગ વાશિષ્ઠ આદિ પઢને કે લિયે ઉન્હોને સૂચના કિયા હૈ. ઇસ તરહ સે બાત લલ્લુજી કો જો ક્યા હૈ વો સભી મુમુક્ષુઓ કો, વો ભી એક મુમુક્ષુ થે, સભી મુમુક્ષુઓ કો અપને અપને સ્થાન મેં લાગુ પડતી હૈ. આગે કા વિષય લેંગે કલ.